और अगली सूरत तकवीर 29 आयात हैं उसकी, वो शुरू होती है। सेम वही टॉपिक, क़यामत की मंजर कशी, पहली 7 आयतों में, इज़ शम्सु कुवीरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, और वज़ल नजूम उनका दरत, तारे मंद पड़ जाएंगे, वज़ल जिबाल सुजीरत, और जब पहाड़ चलने लगेंगे, वज़ल इशार व तिलत, 10 महीने की घाबन ऊँटनी, जो बड़ी कीमती होती है क्योंकि वो बच्चा डिलीवर करने के करीब होती है, मालिक को पता है कि अब एक और ऊँटना आ जाएगा तो मैं इसकी हिफाजत करूँ, वो भी खुली फिर रही होगी, किसी को अपने नफ़े नुकसान की उस वक़्त फ़िक्र नहीं होगी दुनियावी लिहाज से। वज़ल व होश हुशीरत, और उस दिन जानवर इकट्ठे कर लिए जाएंगे, यानी इंसान की कैफियत आम दिनों पर क्या थी कि वो अपनी जगह पर होता है, वो तो जंगलों की तरफ भाग रहा है, और जंगलों वाले जानवर आबादियों में आ रहे हैं, यानी एक अजीब क्योस होगा। वज़ल बिहार सुजीरत, और जब समंदरों में दरियाओं में आग लगा दी जाएगी। वज़न नफूस सुजोविजत, ये है सबसे अहम बात, जब मिला दिए जाएंगे, जब रूहें किसके साथ मिलेंगी, मरते वक्त हमारी जान जिस्म से अलग हो जाती है, क़यामत के दिन जान वापस जिस्म के साथ जुड़ जाएगी, ये है वज़न नफूस सुजोविजत। इंसान पूरे होश और हवास के साथ ज़िंदा होगा। हम बचपन में एक कहानी बड़ी पढ़ते थे, मुर्दा ज़िंदा हो गया, कब्र खुली, और हर मैयत वाले घर में यही ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे ये मैयत अभी उठकर बैठ जाए। ये ख्वाहिश पूरी होगी इंसानों की आगे जाकर, और फिर वो जो कुछ उस पर हो गुज़रा उसको बयान करे अगर, तो क्या कुछ ना बयान करे। अल्लाह ने इसीलिए यहाँ से जाने के बाद वापसी का रास्ता बंद कर दिया कि अगर मुर्दे अपने साथ होने वाले मामलात की तफसीलात बताने लगे तो जो ज़िंदा लोग हैं ना उनका दिल वैसे ही दुनिया से उठ जाए। तो ज़रा सा सोचिए, क़यामत के दिन एक जैसे अमल करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी इसका एक मफहूम है ज़ुव्वीज़त का, यानी उनको लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर की तरह कर दिया जाएगा, जो जिस तरह के काम करता होगा उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर्स अमूमन किसी हॉस्पिटल में होते हैं, लॉयर्स एक बिल्डिंग में मुख्तलिफ ऑफिसेस में बैठते हैं, वहाँ भी लोग एक जैसे काम करने वाले इकट्ठे होंगे। फिर इसी तरह से एक और कैटेगरी जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, इनको जन्नत में मिला दिया जाएगा, और इसके बरक्स जो शैतान की पैरवी में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इनको जहन्नुम में इकट्ठा कर दिया जाएगा। वही हिजबुल शैतान और हिजबुल्ला सूरत हशर में हम पढ़ के आए 28 पारे में, यानी वहाँ लोग बिल्कुल अपने जैसे लोगों में होंगे। दुनिया में तो कभी अच्छे के साथ बुरा, कभी बुरे के साथ अच्छा, इसी तरह इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा, ख्वाह ये चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन उस दिन इंसान अपने ही दोस्तों के साथ होगा। तो लिहाजा करें क्या, दुनिया में अपनी मोहब्बतों का जायज़ा लें। रोज़े क़यामत क्या होगा उसकी कुछ मजीद झलकियाँ, आयत 8-14, व इज़ल मऊदतु सुइलत, जब जिंदा गाड़ी बच्ची से पूछा जाएगा, उससे क्या पूछा जाएगा, बी आई ज़म्बिन कोतिलत, तेरा गुनाह क्या था, तो क्यों कत्ल की गई। अब सवाल ये है कि उससे क्यों पूछा जा रहा है, माँ बाप से पूछे जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने बच्ची को ज़िंदा दफन कर दिया, इसलिए कि अल्लाह नाराज़ इतना उसके माँ बाप से कि उनसे कलाम भी नहीं कर, और इंसान सब किया धरा सामने देख लेगा, छुपे खुले तमाम आमाल सामने आ जाएंगे। ज़रा अपने अमाल नामे को अपने सेल फोन से रिलेट कीजिएगा, क्या क्या डाउनलोड किया हुआ है, हिस्ट्री क्या बता रही है, आप किन किन वेबसाइट्स पे गईं, आपकी सफारी की हिस्ट्री खोलें, आपके यूट्यूब चैनल की कोई हिस्ट्री खोल लें, आपके विज़िट किए हुए पेजेस को क्लिक तो करें, आपने ऊपर एक पासवर्ड लगा दिया कि नहीं 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 कोई ना देखे, आपकी तस्वीरें आपकी पिक्चर्स, और एकदम खुदा ना खास्ता कोई ऐसी पर्सनल चीज़ गलती से ऑन एयर चली जाए। हमारे यहाँ तो ये लफ्ज़ बड़ा मारूफ हो गया, वीडियो लीक हो गई, ऑडियो लीक हो गई, कभी हुक्मरानों की और कभी बड़े लोगों की। आप सोचिए, अगर आपकी मेरी ऑडियो वीडियो लीक हो गई तो क्या होगा? नामे अमाल एक बंद दफ्तर है, क़यामत के दिन खोल दिया जाएगा। आज सोच कर लिखिए, सोच कर बोलिए, सोच कर सुनिए। ये दुनिया अल्लाह ने हमें दी है कि हम जन्नत के लिए कमाई करें, वहाँ जाकर पता चलेगा कि क्या कमा कर लाए हैं, क्या हासिल किया दुनिया से, आखिरत के लिए क्या इकट्ठा किया, कौन से नेक अमाल किए। इसलिए आज शऊर से जी, मोमिन कैयस होता है, बड़ा जीनियस होता है, एक रुपया भी ज़ाया नहीं करता और कॉपी का एक सफ़ा भी ज़ाया नहीं करता। तो ज़रा सोचिए कि मेरे पास जो नेमते हैं, क्या मैं उसको पाकर, फ़ोन है मेरे पास, लैपटॉप है मेरे पास, वाईफाई है, मेरा घर है, मेरे पास कुर्सी मेज़ है, क्या मैं यहाँ से गंदगी, बेहूदगी, खुराफात और बेकारियात को देखती सुनती रहती हूँ, या मेरे से कोई अच्छी बात जा रही है। आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तذکرہ ہے کہ کیسے اللہ نے ان کے ذریعے قرآن کا نزول کروایا، آیت 15 سے 24 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہو لقول رسول کریم، جبرائیل کا تذکرہ آ گیا اس میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہیاں دے کر آپ کو مجھے زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ سوال دیا جا رہا ہے، آیت 25 سے 29 میں، کہ تم سوچو تو صحیح کہ تم جا کدھر رہے ہو۔ اس میں آپ ہائی لائٹ کیجئے آیت 26 کو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ سر اٹھا کر بھاگ کدھر رہے ہو؟ تم روز صبح گھر سے نکلتے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، بچے سے لے کے بڑے تک روز صبح گھروں سے نکلتے ہیں، کم و بیش کچھ بزرگ ہیں بیچارے بیڈ ریڈن ہوں گے، وہ بیٹھ جائیں گھر میں تو اور بات ہے، ماسیاں بھی نکلتی ہیں صبح اٹھ کر، اور پڑھے لکھے افسر بھی نکلتے ہیں، آپ بھی نکلتے ہوں گے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب ایک مرد ہے، وہ کہے گا کمانا، الحمدللہ کمانا تو رزق حلال، کمانا آپ کا فرض ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنتی تو اللہ کا دوست ہے، اور سچا تاجر تو کل بڑے اچھے لوگوں میں ہوگا، اور قوامیت کے درجے پہ اگر آپ اپنی بیوی کی ذمہ داریاں پوری کریں تو ایک لقمہ بھی جو آپ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ آپ خواتین ہیں اگر، تو آپ کی زندگی کا مقصد چولہا چونکا، گھر کو صاف کرنا یا کرانا، اور بچوں اور میاں کے آنے سے پہلے کھانا پکا کے رکھنا، عبادت ہے یہ۔ آپ کا سبزی کاٹنا، حتیٰ کہ پیاز کاٹتے ہوئے جو آپ کے آنسو ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی راہ کے آنسو لکھ دیں، کیونکہ آپ اتنے پیار اور محبت سے کھانا بنا رہی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، پھر ان کو کھلانا سمیٹنا عبادت ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ یہ پڑھنا پڑھانا یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں، کہ میاں صاحب کو کہہ دیا آپ دو سال آپ خود ہی اپنا ارینج کیجئے گا، وہ کہتے ہیں نہیں دو سال نہیں، میں ہمیشہ کے لیے کر لیتا ہوں، آپ جائیے پڑھیے پڑھائیے، یہ نہیں مطلب۔ ہر کام کرتے وقت خوش ہوا کریں۔ حضرت خدیجہ نفس سلم کے لیے غار حرا میں کھانا لے کے جاتی تھی، اگر آپ کے شوہر اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ بھی یہ سنت پوری کر لیں۔ وہ اس وقت ایک نبی کی خدمت نہیں کرتی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مرد کل محمد رسول اللہ بنے گا اور میں اس کی خدمت کروں تاکہ مجھے بھی شہرت مل جائے۔ وہ ایک سمپل محمد بن عبداللہ، ایک کمزور، نہ ماں نہ باپ، نہ پیسہ نہ دھیلا، بس شرافت دیکھ کر، اس کی دینداری دیکھ کر اس کی خدمت کرتی تھی۔ آپ بھی اپنے شوہروں کی کیجیے، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ کروڑوں کما کر لائیں گے تبھی کچھ آپ ان کو اچھا سے سرو کریں گی؟ لیکن یہ سب ذمہ داریاں ہیں، مقصد ایک ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نمازی۔ پورے پورے گھرانے مل کر اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے کام کریں، شوہر بیوی بچے ہیپی ہوم، خوشحال گھرانہ مل کر کریں، آپ یہ اکیلے نہیں چل سکیں گے، ابھی سے آج سے کوشش کریں۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کو ساتھ لے، آؤ بیگم چلتے ہیں، فلاں جگہ ایک کورس ہو رہا ہے، آپ بھی سیکھیے میں بھی سیکھتا ہوں، اچھا آپ کو میں ادھر ڈال دوں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، بچوں کو اسکول میں ڈال دیجئے، کچھ اچھا کر کے جائیں دنیا سے۔ اور مسلمان ایسے ہی تھے۔ تو بڑا خوبصورت پیغام ہے اس سورت کے اینڈ پہ، اگلی سورت بھی قیامت ہی کے موضوع پہ ہے، سورت الانفطار، 19 آیات ہیں اس میں۔ پہلی 12 آیات کا ٹاپک کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا और पीछे क्या छोड़ा, इज़ समान फतरत से बात शुरू होकर अलीमत नफसुम मा कद्दमत वाखरत। आयत नंबर 5 को हाईलाइट कीजिएगा। हर शख्स जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। आप और मैं भी सोचें, आप मैं क्या छोड़ कर जाएंगे, वट एम आई लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ रही हूँ, क्या छोड़ा, क्या खोया, क्या पाया, कैसी औलाद छोड़ के जा रही हूँ। कुछ सदका जारिया है मेरे पीछे। और वह हदीस भी आपको याद होगी ना कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमल मुनक़त है। तीन चीज़ें बाद में भी आती हैं, सदका जारिया जो कोई कर गया ज़िंदगी में, इल्म जो सीख सिखा गया, और औलाद जो छोड़ गया। तीसवा पारा हमेशा दिल के ऊपर कुछ असरात छोड़ जाता है। इतने दिन से आदत हुई होती है ना, तो फिर हमें तकमील और ख़त्मुल कुरान, इसकी खुशी के साथ साथ उदासी भी लग रही होती है कि अब यहाँ छुट के अब किधर जाएंगे। एक तो अल्लाह हमारे लिए प्लान बना देता है, एक हमने खुद बनाने होते हैं। तो सोचिएगा इस दुनिया से आगे जाकर क्या करेंगे, पीछे क्या छोड़ रही हूँ, मेरी यादें क्या हैं, मेरे नक्शे पाके, मैं जिस जगह से उठ के चली गई वहाँ से मैंने कोई खैर छोड़ी, कोई दुआएं छोड़ी, या लोगों की आहें ली, कोई शर फैला गई कि नहीं। हर बंदा कुछ ना कुछ तो असर डाल रहा है, हमारे प्रिंट्स भी हैं और हमारे इम्पैक्ट्स भी हैं। आप किसी महफिल में होती हैं, आपकी मौजूदगी में लोग गीतने शुरू हो जाते हैं या कोई अच्छी बातें करते हैं, और ख़ास तौर पर या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया, तू उससे क्यों इतना नाराज़ रहता है, तू उसे क्यों इतना गिले में रहता है, वो तो बड़ा प्यार है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शा रकबक, उसने तो तुझे इतने प्यार से बनाया, नुक सुकते दुरुस्त किया, तेरी एक पलक दूसरी पलक के बराबर, तेरे एक नाक का नथना दूसरे नथने के बराबर, तेरी एक आँख लंबी और दूसरी गोल नहीं है। कभी अपने चेहरों को तो देखिए, आप देखिए कि ये जो आयत के अंदर टुकड़ा है ना, ये आपको मुझे बता रहा है, कभी अपनी शक्ल को बुरा ना कहें, क्योंकि फ़ी अय्यि सूरतिम मा शा रकबक, आपकी मेरी सूरतें भी अल्लाह का फैसला है, तकदीर का हिस्सा है। इसको ज़्यादा डिस्कस ना करें, लेकिन आगे अल्लाह बता रहे वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हारे ऊपर कुछ हिफाजत करने वाले हैं, किरामन कातिबीन। देखिए सूरत में तुम्हारा वही मौजू आ रहा है, नाम अमाल को देखो, यालमूना मा तफ़अलून। इसलिए अब आगे दो किस्म के लोगों का तस्करा, अबरार और फुज्जार। आयत 13-19, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिग़ाइबीन। अबरार बिर से है, नेकियाँ करने वाले, ख़ासतौर पर माँ बाप से जो नेकी करे ना उसको बार कहते हैं। बरम भी वालिदैन के लफ्ज़ के ज़हन में लाइए तो हज़रत याह्या की हुबी बर्रम थे वो, इसके बरक्स फुज्जार जहन्नुम में होंगे, क़यामत के दिन दाखिल किए जाएंगे और चले गए तो अंदर से निकलना मुश्किल है। वमा दराका मा यौमुद्दीन, तुम्हें पता ही नहीं है वो क़यामत का दिन है कितना ख़तरनाक और ख़ौफनाक, फिर तुम्हें नहीं पता कि वो यौमुद्दीन के यौम ला तम्लिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, ये वो दिन है जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स को कोई भी इख्तियार नहीं रखता होगा। आपका अपने बच्चों पर सारा इख्तियार ख़त्म, बेगमात पे आपकी अब कोई रोब नहीं चलना, भाई बहनों पे आपका कोई रोब नहीं, किसी के बारे में मुराद है कि आप किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वला अमरु यौमा इज़िल लिल्लाह, आज तो सारा काम अल्लाह के हाथ में है। तो क्या पैगाम दिया है सूरत ने, अपनी फिक्र इस दुनिया में कर लो। आगे सूरत मुतफ़फ़ीन है, जिसमें 36 आयात हैं, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वईद है, आयत 1-6 में, और नाप तोल की कमी का तस्करा मुस्तकिल पीछे हम कौम शुएब के नाते से पढ़ते आए। आज यहाँ नोट कर लीजिए कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने एक पूरी सूरत इस नाम से दे दी, वईलुल लिल मुतफ़फ़ीन की सूरत में। वईल है, ख़राबी है, हलाकत है, चीज़ों में कमी बेशी करने वालों के लिए, हकूक़ और ज़िम्मेदारियों में अफराद और तफरीद करने वालों के लिए। आप देखिए कि एक किलो में से कोई कितना को चुरा सकता है, आधा किलो तो नहीं चुरा सकता ना, पता लग जाएगा एक छटांक, 1 किलो में से 1 ग्राम, तो वज़न एक अमानत है, किसी को भी देते वक्त पूरा पूरा देना चाहिए, पढ़ता हुआ दीजिए। यहाँ एक जुमला लिख लें, मोमिन का दर्जन 12 का नहीं होता, 13 का होता है। यानी डजन को काउंट करें ना, एग्स ले दे रहे हैं ना, तो 12 की बजाय 13 दीजिए, और अगर किसी से आप ही ले रहे हैं तो अगर वो 11 भी दे दे तो इट्स ओके, हमेशा बढ़ता हुआ दीजिए। फिर इसी तरह फ्राइज़ और हकूक, ये भी आपके मेरे मामलात में है, इनके अंदर भी इत्तेदाल होना चाहिए। आज क्या स्लोगन है, मेरे हकूक, विमेन राइट्स, औरतों के हकूक, बच्चों के, लेबर्स के, साहबा ने ऐसे कोई मुतालबे नहीं किया, और अल्लाह के नबी ने उनको सड़कों पर नहीं खड़ा किया था, जाओ अपने लेबर्स राइट लेके आओ। उधर क्या था, जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी वो फिक्र करते थे कि अल्लाह के नबी, हमारा ग़ुलाम, इसका क्या हक है। कहा कि इसकी और तेरी सारी बातों को जमा किया जाएगा, अगर तेरे मुँह से निकले हुए लफ्ज़ या डांट टिपट ज़्यादा हुई और इसकी गलती छोटी हुई तो तू पकड़ा जाएगा, और उधर दूसरा मामला है तो वो पकड़ा जाएगा। कहा अल्लाह के नबी, मैं इसको आज़ाद ही कर दूँ। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़िया पढ़िए, इतना डरते थे, अल्लाह के नबी हमारी बीवियों के हम पे क्या हक है। 6 बातें बता दी, तू खाए तो उसको खिला और इस तरह चेहरे पे ना मार और बाकी चीज़ें। तो असल इस्लाम का जो मामला है ना, वो ये है, देने की फ़िक्र मुझे हो, लेने की नहीं। इसीलिए अब देखिए कि जब ये आयत पढ़ते हैं ना, तो पता क्या चलता है कि जब हर शख्स अपना हक लेने की कोशिश करता है ना, तो परेशानियाँ होती हैं, देने वाले दे नहीं रहे। आजिर और अजीर का मसला क्या है, हड़ताल करके सारे मजदूर बाहर खड़े हो गए और फैक्ट्री या मिल ओनर साहब दे नहीं रहे, और भी फिर हड़तालें होती हैं, फिर बेचारे जिनकी दुकान चल रही थी वो छुट्टी करनी पड़ती है। तो ये ज़ाहर अल फसाद बनता ही वहाँ है जहाँ आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल कर दें कि आपको क्या मिल रहा है, और इस चीज़ को छोड़ दें कि आपने देना क्या है। जब हर शख्स अपना फ़र्ज़ अदा करता है तो माशरे में खुशगवारी आती है, घरों में भी। आप और मैं फ़िक्र ये किया करें कि बीवी होने के नाते मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही हूँ, माँ होने के नाते, बहू होने के नाते, भाभी होने के नाते, क्या मैं सुरखरू हूँ, क्या किसी एक रिश्ते की अदालत में कल मैं खड़ी की जाने के काबिल हूँ। बस अपनी फ़िक्र करें, और आपके मेरे दीन का अच्छा इजहार घर में होगा। घर वाले आपकी अच्छी गवाही दे देना तो किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गवाही से कम नहीं है, क्योंकि कल पूछा जाएगा हमारे बारे में लोगों से।